गुड इवनिंग। यहाँ सभी को शाम को देखकर अच्छा लगता है। सोने से पहले ज्ञान की चिट चैट आपस में हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने मेरा नाम तो सुना है कि मंदाबेन क्लास कराएंगी, लेकिन ये है राधाबेन। तो राधाबेन को मैं लेके आई क्योंकि उनके भी अनुभव बहुत ही अच्छे हैं। बचपन से ज्ञान में हैं, उनकी मम्मी अंग्रेज हैं और फादर इंडियन हैं, और अभी सेवा करती हैं इटली में। तो हिंदी भी समझती हैं, इंग्लिश भी समझती हैं और इटालियन भी समझती हैं। तो हमने कहा हम आपस में चिट चैट करेंगे और आप सभी सुनेंगे, और आप भी हमारे साथ चिट चैट कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान में तो मेरे को 38 साल पूरे होंगे, और आपको कितने हुए?
30+ तो
बचपन से ज्ञान में हैं इसलिए। और ज्ञान में तो वैसे हम सब सुनते हैं एक ही बात, एक ही मुरली, एक ही ज्ञान, एक ही क्लास, एक ही टीचर, लेकिन समझने वाले सब अलग अलग। नंबर वार नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, बाबा कहते हैं नंबर वार, हम कहेंगे सब अलग अलग, सबकी बुद्धि की समझ अलग अलग, इस कारण से सबका अनुभव भी अलग अलग, और सबके अनुभव से सीखने को मिलता है। ठीक बात है ना दादा बहन? तो आजकल इस बात का खास, आज बाबा ने कौन सी बात पर ध्यान खिंचवाया? याद, याद, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तो ये बात कहां तक हमने समझी है? अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। अगर अपने को आत्मा समझ के याद नहीं करते हैं, यानी कि मैं मंदा हूँ, ये राधा है, हम इस स्वरूप से बाबा को याद करते हैं, तो हमारी याद क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं। भक्ति में भगवान को याद करना और ज्ञान में भी अपने स्वरूप से बाबा को याद करना, वो याद कैसी होगी? भक्ति वाली याद होगी। क्योंकि हम अपने संस्कार से, अपनी इच्छाओं से, अपनी मान्यताओं से, अपनी पसंदी से, अपनी जो भी अपनी अपनी बात से हम बाबा को याद करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो याद याद नहीं कहेंगे। वो बाबा तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। माना उन सब बात में जो हूँ, जो ये जो पर्सनालिटी मेरी बन गई है, वो सब साफ, उससे साफ होकर बाबा को याद करना। आपको समझ में बात आ रही है? तो आप हमारी याद कहाँ तक इस प्रकार से है, मैं आत्मा बिंदी स्वरूप, लेकिन मुझ आत्मा का गुण स्वरूप शांति, प्रेम, पवित्रता। तो उस स्वरूप में स्थित होकर याद करना, उस स्थिति को, उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए याद नहीं करना। समझा बात आपने? वो अलग हो, वो भक्ति की बात हो जाएगी। अगर उस स्वरूप को प्राप्त करने से, करने के लिए याद करते हैं, तो वो भक्ति वाली याद हो जाएंगी। बाबा ने कहा जो मैं हूं, जैसा हूं, आप भी ऐसे ही हो। भक्ति में इस प्रकार से याद, भगवान ऊपर, हम यहां नीचे, और यहां ज्ञान में बाबा एक समानता हमारे में लाते हैं, और उस समानता से याद करना, यानी कि शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप पहले बनना, फिर याद करना। बहुत गहरी बात है वैसे। तो इस प्रकार कहां तक याद करते हैं, तो इस प्रकार की याद के लिए चर्चा करेंगे, ठीक है ना? इस प्रकार से। और अभी मैं किसी से बता रही, कोई किसी ने मेरे को पूछा क्या विषय पर क्लास कराएंगे, मैंने कहा बाबा ने आज जो कहा मुरली में आत्मा अभिमानी होकर याद करना, तो बोला यही तो बात है ना, वैसे अगर ये बात करने के लिए बैठेंगे तो बात ही नहीं रहेगी। जब आत्मा अभिमानी बन जाएंगे, नहीं बने हैं ना अभी तक, तो कौन सी क्या क्या बातें हैं जो हमको आत्मा अभिमानी बनने नहीं देती हैं? हर एक की लिस्ट अलग अलग होगी, सेम लिस्ट नहीं होगी सबकी। ये भी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, यानी कि कागज और पेन लेकर लिखना चाहिए, लिस्ट बनाओ कौन सी बात है जो मेरे को आत्म अभिमानी बनने नहीं देती है, अपनी इच्छाएं, अपनी पसंदी, इच्छा की तो बात छोड़ो, पसंदी कि मेरे को ये पसंद है, मुझे तो ये मैं बहुत सुनती हूँ यहाँ, वैसे विदेशी बात करते हैं ना, ऐसे बात नहीं करेंगे, यहाँ मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को तो ऐसी ही आदत है, यानी कि ऐसी आदत है, मुझे यही पसंद है, तो इट्स ओके। मतलब हम अपने आप को परमिशन देते हैं, छुट्टी देते हैं कि ये करना ठीक है, हम तो इसको बदल नहीं सकते हैं ना। तो अगर हम ऐसा मन में रखेंगे कि हम तो हैं ही ऐसे, हमको तो ऐसे ही चलना है, हम उसको नहीं, इसको नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, ये नहीं बदल सकते हैं, तो फिर क्या? तो इसलिए सबको इसकी लिस्ट बनानी चाहिए, हमारे कौन सी बातें हैं। ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वो ऐसे है 18 लेसन, लास्ट लेसन, लेकिन एक्चुअली वो सबसे पहला लेसन। अगर बुद्धि हमारी यहाँ कहाँ व्यस्त है, यहाँ कहाँ फंसी हुई है, चाहे बाल हैं, बच्चे हैं या कोई भी है, तो फिर वो बुद्धि आत्माभिमानी नहीं बन सकती है। आत्मा अभिमानी माना क्या? राधा बहन आप सुनाओ, आप कैसे अभ्यास करती हो?
एक्चुअली इस बारी मधुबन में ये बहुत अच्छा अभ्यास चल रहा है कि सबसे पहले जैसे योग में बैठते हैं, वैसे चलते फिरते उसकी भी बात है, लेकिन जब योग में बैठते हैं तो सबसे पहले शरीर को जैसे रिस्पेक्ट देना होता है, तो शरीर को समझना कि ये शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अपनी एनर्जी को, आत्मिक एनर्जी और शरीर की एनर्जी को थोड़ा सेपरेट करना, तो शरीर को बिल्कुल जैसे शांत करना, और चाहे अपनी जो आइडेंटिटी है, जो आप पहले बोल रहे थे कि मैं राधा हूँ और मेरी सारी इतनी हिस्ट्री है, मेरी ये कहानी है, ये मेरा जैसे एक पार्ट है, तो उससे थोड़ा अलग होने का, और ये इस संकल्प से हम थोड़ा उससे डिटैच हो सकते हैं। जब मुझे ये याद आता है कि मैं तो एक एक्टर हूँ और ये राधा, ये एक जैसे मेरा एक पार्ट है, बहुत अनोखा पार्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि संगम युग का पार्ट है, लेकिन सारे कल्प में एक पार्ट है मेरा, और इस संकल्प से कि मैं इस पार्ट से भी जैसे सारी हिस्ट्री, जो कुछ भी हुआ है, नहीं हुआ है, जो कुछ भी सीखा है, नहीं सीखा है, उससे भी जैसे उपराम होकर के, जैसे उस स्थिति में, बिल्कुल जैसे बीज रूप या अशरीरी स्थिति में, जो बाबा, जिसको बाबा अनादि स्वरूप कहते हैं, तो वो प्रैक्टिस, उसमें इस बार बहुत बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और ये ऐसे लगा कि यही फिर चलते फिरते आत्मअभिमानी की स्थिति की प्रैक्टिस कराएगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं औरों को भी उसी दृष्टि से देखने लगी कि ये भी, हाँ इसका नाम ये है, इसकी सारी कहानी हाँ मैं जानती हूँ, कुछ ना कुछ तो जानती हूँ, लेकिन उससे भी पार ये एक एक्टर है, एक्चुअली ये इसका एक पार्ट है। तो वो जैसे एक पर्सपेक्टिव में डाल देता है, इतना बड़ा। नहीं तो कभी कभी कई बातें होती है हमारे लाइफ में बहुत बड़ी बन जाती है, तो उसको जैसे एक अपना राइट पर्सपेक्टिव में, साइज में उसको डाल देती है।
आपने ये जो बात कही ना कि औरों को भी फिर इस रूप से देखना, तो इसके बारे में आज सोच रही थी। वैसे मैं लिख रही थी, कुछ बात ऐसी हुई जो मेरी बुद्धि को खींच रही थी घड़ी घड़ी, और वही बात याद आने लगी। और ये किसी के प्रति की बात थी, मतलब कोई खराब बात नहीं थी ऐसे कि किसी का अवगुण देखा वैसे, लेकिन किसी के विचार आ रहे थे। तो मैंने कहा ये विचार से मैं कैसे मुक्त हूँ, ये विचार से ये व्यक्ति की याद ना आए या ये व्यक्ति सामने ना आए, उसके लिए हमें क्या करना है। तो बाबा कहते हैं ना कि भाई भाई की दृष्टि, तो भाई भाई की दृष्टि माना क्या, मतलब क्या है। चलो आ ये तो बहन है ना, उसको मैं भाई कैसे देखेंगी। हाँ, आप थ्योरेटिकली आप कह सकते हो कि आत्मा है, आत्मा शरीर में बैठी है, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर में बैठी हूँ, तो ये भी एक बुद्धि की बात हो जाएगी, इट्स इंटेलेक्चुअल बात हो जाएगी। तो इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि की बात होगी ना, तो थोड़े समय तक चल सकेगी। हाँ, आप जैसे तोते के समान अपने आप को याद दिलाएंगे, ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है, लेकिन फिर भूल जाएंगे। ये अभ्यास वैसे करना है, लेकिन कुछ और बात मेरी वृत्ति में आए, मेरी समझ में आए, कुछ और बात जिससे मेरे को रिपीट नहीं करना है, लेकिन मेरा जो भाव है उस व्यक्ति के लिए वो भाव बदल जाए, एकता की। और आजकल तो कहते हैं कि वो लौकिक में अपने भाई या बहन होते हैं ना, झगड़ा होता है तो थोड़ा नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से, लेकिन 2 मिनट के बाद जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, फिर जैसे कि अपना भाई है ना, अपनी बहन है ना, तो वो जो ब्लड कनेक्शन है वो तो है ही, वो ब्लड कनेक्शन जो है वो हमको जल्दी हमारी बुद्धि को ऐसे ठीक कर देता है, समझो। और यहाँ वो ब्लड कनेक्शन नहीं है, इस व्यक्ति को तो अभी अभी जानना शुरू किया है, फिर भी उसको अपनी अपनी वो भावना, अपनेपन की भावना, परिवार की भावना, उस भाषण से देखना, और वो अलगपना नहीं रहे, सेपरेशन नहीं रहे हमारे में और उस व्यक्ति में, तो वो भाई भाई की स्मृति। लेकिन ऐसे नहीं भाई माना बहन नहीं, भाई लेकिन वो मैस्कुलिन फेमिनिन की बात नहीं है इसमें, ये अपनेपन की बात है। बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई भूल करता है ना, अगर हमको भी वो भूल दिखाई देती है ना, तो हमें समझना चाहिए कि वो भूल मेरी भूल है। वो कब होगा, वो जब वो अलगपना नहीं होगा ना, वो सेपरेशन नहीं होगा ना, तब होगा। तो ये अभ्यास अपने लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास, मैं आत्मा हूँ और जितना जितना मैं उस स्मृति में रहती हूँ, तो जो मेरी स्मृति है वो साफ होती जाती है। यानी कोई स्लेट होगी ना, स्लेट के ऊपर लिखत होगी, तो स्लेट को साफ करना होगा ना आपको पहले, तो बाबा की याद से, आत्म अभिमानी स्थिति से वो जो स्मृति भरी हुई ना, जैसे आपने कहा ना, वो ही हमारी स्टोरी है पास्ट की, उसको साफ करने के लिए वो आत्म अभिमानी स्थिति, और औरों के सामने, औरों के साथ संबंध में आते हुए भी वो हमारी पुरानी हिस्ट्री याद ना आए। इट्स बहुत सूक्ष्म बात है, वो मोटे रूप से याद नहीं आती है, हमारी वृत्ति, हमारी मान्यताएं, उससे वो पुरानी बातें हम दोबारा जीते हैं। पता है साइंटिस्ट भी कहते हैं 95% हम पास्ट में रहते हैं, 95% हमारी स्मृति पास्ट में रहती है। मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे हम याद कर रहे हैं कि क्या पास्ट में क्या हुआ, कॉन्शियसली या जानबूझ के याद करने की बात नहीं है, लेकिन हमने जो जाना, जो समझा पास्ट में, उस अनुसार चलना, वो भी पास्ट में चलना है। और उस अनुसार से हम चलते हैं तो हम आत्माभिमानी कभी नहीं बन सकेंगे। जब बैठेंगे ना तब थोड़ा कुछ अनुभव कर लेंगे, 5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए। 20 साल पहले की बात है, दादी कहती थी कि 95% बी केस 95% ऑफ द टाइम सो कॉन्शियस नहीं है, आत्माभिमानी नहीं है। उस समय मेरे को वो ऐसे बात अंदर गई नहीं, चलो अच्छी बात दादी ने सुनाई, सुन ली। लेकिन अब भी पता चलता है 95% हम आत्माभिमानी नहीं है। पर्सनली या कलेक्टिवली या कि संगठन रूप से या अकेला भी हम आत्माभिमानी स्थिति में नहीं रहते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर 95% टाइम हम आत्माभिमानी हैं, तो सारे दिन में कितने समय तक आत्माभिमानी रहेंगे? 24 आवर्स, 24 घंटे दिन में, चलो 8 घंटा सो गए, पता नहीं 8 घंटा कौन सोता है, 8 घंटा चाय मिलता है किसी को सोने का, किसी को नहीं मिलता होगा। चलो 6 घंटा सो गए तो भी कितना हुआ, 16 आवर्स, 18 घंटा तो आप जागृत स्थिति में हो ना, तो 18 घंटे का 95% कितने घंटे हो गए, 18 आवर्स के चलो 16 घंटे आत्म अभिमानी स्थिति, 16 घंटे पास्ट की बात कॉन्शियसली तो जब है तो पास्ट की कोई बात स्मृति में न हो, यानी कि इस घड़ी इस मोमेंट पर मैं इस प्रेजेंट घड़ी में हाजिर होके व्यक्ति को देखूं या परिस्थिति को देखूं या कोई भी बात है, उसको हम कहां तक क्लीन स्लेट साफ स्मृति से इस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर, कोई भी व्यक्ति के सामने आते हैं और कहते हैं कि अगर स्मृति को भी साफ करनी है ना, तो जब भी किसी को मिले ना तो ऐसे मिले कि हम उनको पहली बार मिल रहे हैं। भले कितने समय से उनको जानते हैं आप, 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से भी जानते हैं, फर्स्ट टाइम आप उनको मिल रहे हैं, हो सकता है। अगर आप किसी को पहली बार मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हेलो हाउ आर यू, बहुत अच्छे हैं, कैसे हो, खुशी होती है मिलने की, क्योंकि वो जो पास्ट की बैगेज जिसको कहते हैं, वजन जो है ना पास्ट के स्मृति का, वो नहीं होता है, तो इसलिए खुशी खुशी होती है, खुशी से मिलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी को मिले फर्स्ट टाइम तो आपका व्यवहार कैसे होगा? नो बैगेज, कोई भी पास्ट का बैगेज नहीं।
तो इसका मतलब जब हम जैसे किसी भी देह अभिमान की के जो बहुत सारे अलग अलग रूप होते हैं उसके प्रभाव, उससे प्रभावित होते हैं, तो जैसे कि हम एब्सेंट हो जाते हैं उस स्थिति से, हम अपने जो मैं कौन हूँ रियली उससे हम एब्सेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि कोई भी आदत, कोई भी पुरानी बात है, कोई भी स्वभाव, संस्कार या नेचर, वो प्रेजेंट होकर के हमारी गाड़ी चलानी शुरू कर देती है, ऐसे ही होता है।
Exactly.
तो फिर उस समय हम क्या कर सकते हैं ताकि हम और प्रेजेंट हो सकें उस मोमेंट में?
उसका वो पहले तो अभ्यास करना होता है उस घड़ी में। आजकल तो आप सबने सुना होगा विदेश में खास बहुत फैशन है, फैशन तो क्या, बहुत प्रख्यात है मेडिटेशन, उसका नाम है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस माना कि हर एक प्रेजेंट को आपको माइंडफुल, मानी आपकी मन की स्थिति इस घड़ी में है। तो आप श्वास लेते हैं तो आप एक एक श्वास आपका ध्यान जाए, क्या होता है वाइब्रेशन बदल हो गए ना, यहाँ भी इतना देखते हुए भी जैसे आप सबके वाइब्रेशन हमारे कमरे में यहाँ वाइब्रेशन बदल गए। कैसी कौन सी प्रैक्टिस? नहीं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस अलग है, लेकिन हमारा ध्यान गया उसके ऊपर। ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन अभी ये माइंडफुलनेस की बात है, ये देखने की बात है, कोई भी बात है, एक एक घड़ी उसको हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, क्या देख रहे हैं, किस बात में हमारा ध्यान जाता है। हमारा ध्यान जाता है उसके ऊपर भी ध्यान, समझा आपने बात? आपने देखा तो ऐसे नहीं कि एब्सेंट माइंडेडली आपने कुछ किया। आपको ये होता है ना, घर में गए या कुछ स्टोर में ढूंढने गए, वो स्टोर में गए किस लिए आए, मैं यहाँ क्या ढूंढने के लिए आए, होता है ना ऐसे। वो जब हम एब्सेंट हो जाते हैं ना, लेकिन हर एक घड़ी हम प्रेजेंट रहते हैं ना, तो वो ऐसे भूल नहीं जाते हैं और हर बात को नोटिस करेंगे और नोटिस करके उसको किस स्मृति से, किस दृष्टि से देखना है, समझना है, वो हमारा ध्यान खींचेगा इस बात पर। तो ये एक प्रकार का अभ्यास है, जो ऐसे नहीं किसी के सामने आए उसी घड़ी करना है, लेकिन अभ्यास मोमेंट बाय मोमेंट। उस दिन वो मार्सेलो के साथ इंटरव्यू था, पता नहीं आप थे उस समय या नहीं, तो मन मना भव के मंत्र की बात चल रही थी, तो वो जब रिपीट कर रहा था ना, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव, इस बारी विदेशियों के प्रोग्राम का विषय था मन मना भव मध्याजी भव, हमारे सदाकाल के मंत्र, तो इस मंत्र में हम कैसे रहे उसके बारे में था। तो ये जब ऐसे उसने दो तीन बार रिपीट किया, तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मंत्र को भी रिपीट करते हैं, रिपीट, चलो उसकी जो रिदम है, उसका जो वाइब्रेशन तो उसके पैदा होते हैं ना, उसकी असर हमारे मन पर पड़ती है, शरीर पर भी पड़ती है और वातावरण में भी पड़ती है, लेकिन एक एक घड़ी मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव, तो एक एक घड़ी पर हमारा ध्यान जाए और उस ध्यान से हम नोटिस करते हैं ना, क्या देखा, क्या सुना, क्या हमने फील किया उस घड़ी को। तो वैसे वास्तव में जो माइंडफुलनेस का मेडिटेशन है ना, वो बस वो इतना ही करते हैं, इनसे आगे नहीं जाते हैं वो लोग। हमारे लिए तो पहला कदम ये मेडिटेशन का, उनके लिए यही कदम है मेडिटेशन का, माइंडफुलनेस, यानी कि ध्यान जाए और उसको समझना और उसको ऑब्जर्व करना, यही उनका लक्ष्य होता है। और वो समझते हैं कि जितना हम ऑब्जर्व करते हैं, तो फिर ऑब्जर्व करने से हम उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, कि हमारा फर्स्ट स्टेप सिर्फ है, लेकिन ये हमारे लिए दिस इज आवर वे ऑफ लाइफ, हमारे लिए ये जीने का तरीका है, कि हमको हर एक घड़ी हर एक बात पर ध्यान जाए और हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा और क्या फील किया और क्या रिस्पॉन्ड किया, ये भी हमको डिलिब्रेटली जानबूझ के पता पड़ना चाहिए। जब ऐसा पता पड़ता है, तभी जब किसी के सामने भी आएंगे ना, इवन सी व्हाट्स हैपनिंग, किसी के सामने आएंगे ना, तब अपने आप को कैच कर लेंगे कि हमको तो इसे अपनेपन की दृष्टि, अपने भाई की, अपने बहन की ये दृष्टि से देखना है। तो इससे मैं समझती हूँ कि ऐसे हमारे वाइब्रेशन ही बदल जाते हैं, सॉफ्टनेस, लाइटनेस, हल्कापन, सॉफ्ट मुलायम, जैसे एनर्जी, अपनी एनर्जी, मन की स्थिति मुलायम एकदम, और हमारे आसपास वाइब्रेशन भी मुलायम वाइब्रेशन, जोश वाले, फोर्स वाले, गुस्से वाले, ऐसे वाइब्रेशन नहीं। ऐसे वाइब्रेशन से आत्माभिमानी स्थिति भी नहीं बन सकती है या बाबा को भी याद नहीं कर सकते हैं। बाबा जब आते हैं तो बूम बूम क्रैश होती है क्या? नहीं होते ना। बाबा आते हैं तो एकदम जैसे कि सॉफ्ट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन बदल जाते हैं, एकदम सिंपल वाइब्रेशन, सिंपल। लोगों को जब तक ये पूरी समझ नहीं है तो अव्यक्त बाप दादा के सामने आएंगे तो कहेंगे कि ये क्या है, ये भगवान है क्या? लेकिन जिसने अनुभव किया है उनको पता है कि भगवान क्या है। ऐसे नहीं है बड़ी तेजोमय लाइट है तो जैसे इतनी लाइट है हमारे जैसे कि हम देख भी नहीं सके, ऐसा भगवान नहीं है। जोश फोर्स वाला भगवान नहीं है। भगवान क्या है? सॉफ्ट, स्वीट, लविंग, प्यार भरा, एकदम मीठा, इतना मीठा। जैसे बाबा भी कहते थे ना, दादी साहब कभी कभी सुनाती थी कोई ऐसे बहन को भाई को बाबा देखते ना, बाबा कहते कितने अच्छे हैं, मैं खा जाऊं। मतलब ये स्वीटनेस, ये वाइब्रेशन स्वीटनेस के इतने अच्छे होते हैं तो सचमुच जैसे हो जाता है जैसे कि हमारी प्यास, कितने समय की प्यास थी वो प्यास बुझ गई। रहते हैं अभी बाबा नहीं आते हैं समझो दादी गुजार के तन में, तो भी वातावरण में आपको फील होता है ना, सभी इतने प्यार से बाबा की मुरली सुनते हैं तो अनुभव होता है उस समय कि कुछ है न, कुछ देखने को है लेकिन है कुछ। हाँ हाँ, वो पावर कैसे आती है? हम सब खींच के लाते हैं, हम सब बाबा को याद करते हैं तो बाबा कैसे बैठ सकेंगे ऊपर? नहीं बैठ सकते हैं ना, तो इसलिए वो। लेकिन बाबा भी हाजिर तब है जब हमारी आत्म अभिमानी स्थिति है, यानी कि हम सब ये अपने चोले के भान से, चोले के संस्कार के भान से, चोले के पास्ट के भान से जब अलग होते हैं ना तब वो वाइब्रेशन। तो वास्तव में अभ्यास बहुत सहज है एक्चुअली, जितना सहज है उतना ही मुश्किल है। टू मच सहज है इसलिए मुश्किल है।
अच्छा, बाबा ने ये भी कहा था कि जब तक अलफ को नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी नहीं जानेंगे, नहीं? तो आज ये भी अनुभव हो रहा था कि जैसे कि मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा कि बाबा आप शिव बाबा को कैसे देखते हैं, नहीं? आप क्या फील करते हैं जब आप शिव बाबा की याद में बैठते हैं? तो उससे बहुत अच्छा जैसे डायलॉग चल रहा था बाबा, ब्रह्मा बाबा के साथ, और जैसे शिव बाबा कितनी बड़ी हस्ती है लेकिन कितना समीप, कितना प्यार का सागर, और वो मीठापन का जैसे सागर है, जैसे अंदर में वो ये सब बातें हमारी, जो हमारे अंदर जो सबसे बेस्ट बात है उसको खिला देता है। तो ऐसे लग रहा था कि हमारी आत्म अभिमानी होने की स्थिति वो भी इसलिए है ताकि हम ये बाबा अलफ को हम इतनी अच्छी तरह से जानना, पहचानना और उसी के वाइब्रेशन के अंदर चल सके। क्योंकि आत्म अभिमानी तो फिर सत्युग में तो नेचुरल होगी, नहीं उसमें कोई अभ्यास की बात नहीं है, लेकिन हम क्यों हम इतना बॉदर करें? क्योंकि मुश्किल भी होता है, सहज भी है लेकिन मुश्किल है।
मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो जो सूक्ष्मता है ना, उस सूक्ष्मता से को हम अनुभव करें ये मुश्किल है। क्योंकि हम मोटेपन से हिरे हुए हैं, आवाज से हिरे हुए हैं, कलर्स, टेक्सचर्स, ये सब बातों से हिरे हुए हैं। तो हिरे हुए इससे है तो इस सब से एकदम मुक्त होकर, एकदम फ्री होकर, ये जो इंग्लिश में एक्सप्रेशन है नथिंगनेस, इंग्लिश में, हिंदी में उसका व्हाट इज द टर्म फॉर इट,
जैसे निल,
निल अवस्था, दैट्स इट। तो निल अवस्था में स्टिलनेस इज फिर भी अलग है। निल अवस्था जिसमें ना हमको अपना नाम, रूप पाठ समय कोई भी बात की स्मृति नहीं, स्मृति सिर्फ है तो बस यही स्मृति है कि मैं एक ज्योत एक चैतन्य शक्ति, मैं चैतन्य शक्ति हूँ, उसमें और कुछ याद नहीं, कौन हूँ कहाँ से हूँ कितना पढ़ा है कितना लिखा है क्या सेवा करती हूँ कितनी अच्छी सेवा करती हूँ कुछ भी नहीं। ये है आत्म अभिमानी स्थिति योग में बैठ के, नाम रूप समय पाठ रोल कुछ भी याद ना आए खुद के लिए। ये जो ये नील अवस्था कहो इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम सब बातों में फंसे हुए हैं, नाम में रूप में पाठ में सेवा में, सेवा में तो बहुत फंसे हुए हैं, इतना फंसे हुए हैं तो उससे निकलना ही मुश्किल है। सेवा करते हुए भी हर रूप से हर रीति से भान न रहे सेवा का,
कई बारी सेवा में कुछ न कुछ जैसे कह सकते हैं कुछ न कुछ बातें आती है, लेकिन मैंने देखा है कि आप हमेशा उमंग उत्साह में रह करके हर बात करते रहते हैं और बहुत ही जैसे एनर्जी के साथ, नहीं तो चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी पहाड़ी आए तो आप अपनी अपने उमंग को कैसे जैसे बहुत पक्का करके रखते हैं, क्योंकि ये भी आत्म अभिमानी स्थिति है। नहीं, उमंग अगर कोई हिम्मत चली जाए तो वो भी जैसे निराश होकर के, कोई भी निराश होकर के भी सेवा होती है, लेकिन उमंग में आकर के कोई भी बात सामने आए तो उस स्थिति को आप कैसे कायम रखते हैं?
मैं हमेशा समझती हूँ जो भी करूँ वो मौज से करूँ, मुझे ऐसे ही होता है कि जो भी सेवा मेरे सामने आए मैं करूँ, तो भले अगर कोई बात ऐसी कोई सेवा ऐसी आती है तो थोड़ा होता है मेरे को ये नहीं करना है, लेकिन मैं अपने मन को करेक्ट करके ठीक करके फिर वो सेवा करूंगी। ऐसे नहीं चलो जबरदस्ती वो खींच के चलाना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं जो भी करूं वो मौत से करूं, तो मैं उसमें खुशी से करती हूं। मैं अपने मन को बदल देती हूं कि ये अभी इस घड़ी करना है तो इसको मैं कैसे एंजॉय करूं, कैसे मुझे मजा आए, और इसके लिए ये मजा नहीं अच्छा हो सब देखे उसका रिजल्ट अच्छा है तब मैं तब मुझे मौज मिलेगी कि सब मुझे कहेंगे बहुत अच्छा किया तब मुझे मौज आएंगी, नहीं, मौज करने में है, मौज करने में है और उसको संपूर्ण रीति से करने में है, और बाबा की सेवा है और बाबा ने मुझे दी है वो समझने से और कैसा औरों को फायदा मिल रहा है वो स्मृति रखने से मुझे उमंग रहता है। लेकिन मैं ये नहीं मैंने कभी अपने लिए अभी कितने सेंटर में रहते हुए 37 इतने साल हो गए, मैं कभी ये नहीं समझती ये सेवा है ये सेवा नहीं है, समझा मेरी बात, कि ये मैं काम कर रही हूँ ये कुछ कर रही हूँ तो ये सेवा है और ये कर रही हूँ तो ये सेवा नहीं है। जो भी करना है बाबा के घर में वो सब अपना समझ के करना है, ऐसे भी कि नहीं कोई बात नहीं ये तो बहुत अच्छी सेवा है या बहुत अच्छी सेवा नहीं है या बड़ी सेवा है, ये भी नहीं, ये कार्य है ये कार्य करना है और कुछ नहीं सोचना है। और तो और क्या है, मुझे करने में भी मजा आता है, लेकिन ये भी एक पिंजड़ा हो सकता है क्योंकि हमको करने का शौक होता है, सेवा करने का शौक होता है, बिजी रहने का शौक होता है, ये शौक अच्छा है, लेकिन ये शौक में ये नहीं कि अपने अंदर की पुरुषार्थ की बात ये रह जाए। मैं कहूंगी अपने आप को 30 साल से ज्यादा हमको दादी के साथ हो गए, दादी के साथ ट्रैवलिंग बहुत किया, सारे विश्व भर में दादी के साथ ट्रैवलिंग किया, दादी का ट्रांसलेशन पब्लिक ट्रांसलेशन प्राइवेट पर्सनल ट्रांसलेशन, दादी के पत्र पढ़ना दादी को पढ़ के सुनाना उसका जवाब देना वो सब कुछ किया, बहुत सारा किया, लेकिन एक बात मिस की, वो मिस खुद के पुरुषार्थ की कमी के कारण की, वो कि ये सब करते हुए बहुत अच्छा लगता था, दादी के साथ सेवा करना और ब्राह्मणों की कंपनी तो कितनी अच्छी कंपनी है, इतनी शुद्ध कंपनी कहाँ भी हमको नहीं मिलती है, इसलिए ब्राह्मणों के भी साथ बहुत मजा आता है। लेकिन ये सब करते हुए भी घर से सूक्ष्म में अपना पुरुषार्थ चले, ये पुरुषार्थ नहीं किया, तो अभी पता चलता है। और अभी ये सब, ये पुरुषार्थ का मेकअप अभी करना है थोड़े समय में, इसलिए मुझे तो यही होता है कि पुरुषार्थ का समय जो है वो अभी है, अभी थोड़े ही समय में समय आने वाला है जिसमें हमको पुरुषार्थ का समय नहीं मिलेगा। उस समय बाबा ने कहा ना, आप लोगों को खाने का भी समय नहीं रहेगा, सोने का भी समय नहीं रहेगा, इतनी क्यों लगने वाली है, अभी वो क्यों नहीं लगी है, अभी फिर भी हम बैठ के कुछ अपने लिए कर सकते हैं। और मैं समझती ये समय अभी है, और ये समय को हम जाने देंगे तो फिर पछताएंगे कि समय था तो नहीं किया। कभी कभी ये भी होता है अपनी सेवा से अलग होके भी करना पुरुषार्थ, सेवा में रहते हुए भी स्मृति रखना, बैलेंस रखना, ये करना है, लेकिन कभी कभी सेवा से अलग होकर भी समय निकालना। और फिर सबसे बड़ी तो बात ये है, हम समझते और क्या कहेंगे, वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे मैंने ठीक नहीं किया, और जो लोक लाज की बातें होती है ना, वो बातें भी हमको पुरुषार्थ होती हैं, बहुत बड़ा बांधा डालती हैं। तो वो भी तो, वो तो खास बात होती है। आजकल यहाँ पे ब्राह्मण परिवार में भी लोग हमको समझे कि हम सही बात कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का पार्ट अपना है। मेरा पार्ट क्या है, अपनी ब्राह्मण जीवन का पर्पस क्या है, पर्पस में भी रोल में नहीं कि मैं क्या पार्ट बजाऊं स्थूल रूप से, वो तो बाबा जो हमें देगा वो करना है, वो तो अलग बात है। अंदर से मेरा पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जीने का भी पर्पस क्या है, ब्राह्मण बनने का पर्पस तो है ही, लेकिन जीने का भी पर्पस क्या है। सचमुच देखा जाए तो आजकल और कुछ नहीं है, औरों की सेवा, औरों को सेवा में भी क्या, ये स्मृति के औरों को भी भगवान का अनुभव हो, क्योंकि भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, और कोई बात नहीं है जो किसी को मदद करेगी। लेकिन सबसे अगर मैं किसी को ये संदेश दूं, उसके पहले मैंने भी कहां तक समझा है कि मेरे जीवन में भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है, अगर आज कुछ बात आती है तो मुझे उसको जल्दी खत्म कर देनी है, आएगी।
पिछले दिन दादी जानकी से पूछा था कि संतुष्टता का गुण कैसे हमारे अंदर धारण होगा, और दादी ने ये कहा कि जब सियाने बनेंगे, माना सेंसिबल बनेंगे, तब उससे संतुष्टता का गुण बढ़ता जाएगा, संतुष्टता की शक्ति आती जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि जो मैंने समझा उससे कि अपनी जो हर बात में अपनी जो दिव्य बुद्धि है बाबा के ज्ञान के साथ, मुरली के साथ मैच करके, सनापन तभी आएगा जब हम उसको हर बात में चेक करके और वो दिव्य बुद्धि को अप्लाई करेंगे। मुझे याद है एक बारी मैं दादी से कुछ पूछ रही थी, बहुत साल हो गए, और दादी ने कहा तुम्हारी बुद्धि कहाँ है। तो जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम समझते कि नहीं नहीं हमेशा औरों की ओपिनियन, औरों से पूछना, बड़ों से पूछना, लेकिन ये भी बात जैसे बैलेंस होना चाहिए ना कि, और उसके लिए ये जो जैसे आपने कहा कि अपने लिए टाइम निकाल करके समझना कि कहाँ तक मेरे अंदर रियली वो जो संतुष्टता का गुर ही नहीं लेकिन शक्ति कहाँ तक रियली जैसे अंदर में गई है ताकि समय में वो यूजफुल हो।
आप जब ये बात कर रहे हैं तो मुझे याद आता है, ख्याल आता है कि क्या कौन सी बात बुद्धि ज्ञान से समझ से और ये शानप से कौन सी बात हमारे में होनी चाहिए, और वो मुझे आता है कि रूहानियत से स्वमान, रूहानियत से स्वमान। जितनी स्वमान हमारा हमारी रूहानियत के आधार से हो, क्या आता है, क्या किया है, क्या ये सब नहीं, जितनी आध्यात्मिकता से रूहानियत से मेरा स्वमान, मेरे स्वमान का आधार सिर्फ मेरी रूहानियत, मेरी आध्यात्मिकता। तो हमारा ये अभ्यास चले कि हमारे में रूहानियत बढ़ती जाए, और रूहानियत बढ़ाने का आधार तो यही है ज्ञान और योग। और रूहानियत आजकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि रूहानियत कैसे पता चलता है, रूहानियत ये कि कोई भी बात किया तो उसका तुरंत हमको रिजल्ट चाहिए, अगर तुरंत रिजल्ट चाहिए तो इस रूहानियत नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि जो बच्चे थे तो कई बच्चे, उन्होंने कहा बच्चों को अगर आपको केक अभी चाहिए तो हम एक केक देंगे, अगर आपको दो घंटे के बाद आप इंतजार करो तो हम आपको दो केक देंगे। तो ये भी जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यू नो दिस, ये बात की संतुष्टता ऐसे नहीं अभी अभी हमको मिल जाए, लेकिन बाद में हम अभी कुछ करेंगे तो बाद में उसकी उसका फल मिलेगा। ये रूहानियत के आधार से होता है। अगर हम कुछ करते हैं, कुछ अच्छा किया, सब कहे बहुत अच्छा किया, तुरंत उसका फल चाहते हैं, तो ये है निशानी आध्यात्मिकता की कमी। हाँ, ये कच्चा फल बाबा कहते हैं, अगर कच्चे फल की इच्छा है तो माना रूहानियत की कमी। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति, गुड नाइट।
ओम शांति।